हम सभी संपूर्णता के पथ के राही हैं। इन राहों पर हमें बहुत संभल संभल कर भी चलना है और तीव्र गति से भी चलना है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे सरल चित्त स्थिति पर। हम बहुत सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं और नम्र हो जाएं। दोनों ही चीजों का जीवन में भी बड़ा महत्व है और योग की साधनाओं में भी बड़ा महत्व है। हम जानते हैं कि जब हम निरंतर योग युक्त हो जाएंगे तभी हम संपूर्णता को पाएंगे। योग युक्त होने का टॉपिक हम लास्ट में लेंगे। हम चर्चा कराए हैं कि हम पहले स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करते चलें ज्ञान के बल से, अपनी बुद्धि की सफाई करते हुए, ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए हम पहले व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। जब मन व्यर्थ से मुक्त हो जाता है तब वो सहज योग युक्त हो सकता है। हमें बहुत सारी धारणाएं जीवन में अपनानी हैं। यों तो संपूर्ण बनना है तो सर्व गुणों में ही संपूर्ण होना है, सर्व शक्तियों में संपूर्ण होना है, परंतु फिर भी कुछ को हम पहले ले लें। सभी गुणों की लिस्ट तो आपके पास है। आप शायद इतनी लंबी लिस्ट पढ़कर सोचते होंगे कि इतना सब कुछ धारण करना पड़ेगा, परंतु ये सब चीजें कुछ थोड़ी ही धारणाओं से जुड़ी हुई हैं। यदि मनुष्य सहनशील हो जाए, यदि वो धैर्य चित्त हो जाए, यदि वो भगवान को पाकर अपने चित्त में वैराग धारण कर ले और इस वैराग से उसकी वृत्ति त्याग वृत्ति बन जाए, यदि वो बिल्कुल सरल चित्त हो जाए, ज्ञान चिंतन से सदा प्रसन्न रहने लगे, संतुष्ट रहकर इस जीवन की यात्रा पर चले, तो सारे गुण स्वतः ही पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ गुणों को धारण करने की मेहनत करनी पड़ती है, कुछ गुणों पे थोड़ा थोड़ा अटेंशन देने की ही जरूरत पड़ेगी और वो सहज जीवन में आ जाएंगे। हमें बस ध्यान रखना होगा, हमें सहन करना है, हमें ध्यान रखना होगा, हमें धैर्य चित्त होकर रहना है, हमें ध्यान देना होगा कि कम बोलना है, अच्छे बोल बोलना है। जैसे जैसे हमारी योग की शक्ति बढ़ती जाएगी तो केवल इन धारणाओं पर ध्यान देने से ही ये गुण हमारे जीवन का श्रृंगार बनते जाएंगे। तो हम सरलता की ओर चलें, सॉफ्ट करें अपनी नेचर को। कई मनुष्यों की आदत होती है हर बात को सीरियसली लेना, जल्द ही हर बात में ऑफिशियल हो जाना, कोई भी काम करने से पहले ही टेंशन शुरू कर देना। इस नेचर को जरा बदलेंगे, सरलता से चलें। सबके पास सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान है। हम वही तो कर रहे हैं जो हमने कल पहले किया था। नया क्या है? कल पहले भी हुआ था, अब भी हो जाएगा। ये संकल्प हमें हल्का करेगा। प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। भगवान स्वयं हमें साथ दे रहा है, कुछ भी तो भारी नहीं है। जिनके साथ परम सत्ता कार्य कर रही हो उनके लिए कुछ भी तो कठिन नहीं है। हल्का करो अपने को। जन्म जन्म के बोझ ने भी मनुष्य को भारी किया हुआ है। जिम्मेदारियों का बोझ ढोते ढोते कई आत्माएं, माताएं, भाई भारी हो गए हैं। कईयों के पास वर्तमान में इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो सोच सोच कर भारी हो जाते हैं। हल्का करना है स्वयं को। पास तो पूरा हो गया, उस थकान को अब मिटा दें इस स्मृति से, इस नशे से कि चाहे हमारे जीवन में कुछ भी क्यों न हुआ हो, उतार चढ़ाव आए हों, पूर्व जन्म हमारे कैसे भी भारी और दुख में बीते हों, लेकिन अब तो भगवान मिल गए। उस मंजिल पर हम पहुंच गए जिस पर पहुंचना लोगों के लिए नितांत असंभव होता है। असंभव संभव हो गया, कठिन सरल हो गया। भगवान के सामने बैठते ही जन्म जन्म की थकान मिट गई ना, न मिटी हो तो मिटा लें। उसने अपनी दृष्टि देकर मीठे बच्चे कहकर प्यार का हाथ सिर पर फेर कर हमारी सारी थकान मिटा दी। कह दिया अब मेरे पास आ जाओ, अब तुम मेरी छत्र छाया के नीचे आ जाओ। ये माया, ये समस्याएं, ये बोझ सब मेरे हवाले कर दो, बस इस तरह हल्के हो जाओ। जिम्मेदारियों का बोझ भी बाप पर छोड़कर फिर कर्म करो, वो सब कुछ ठीक कर देगा। किसका हाथ पकड़ा है हमने, जरा विचार तो करें। कौन आया है हमारा सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए, जरा आंख खोलकर देखें तो सही। किसकी छत्र छाया में, किसकी पालना में ये जीवन पल रहा है, याद किया करें। अपने चित्त को सुखों से भरते चलें, अपने चित्त को इन ईश्वरीय आनंद से, इस परम शांति से भरपूर करते चलें, तो मन सरल चित्त हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएंगे हम, क्योंकि संकल्प ने ही मनुष्य को भारी किया है। संकल्प को सरल करें, सोचते ही तो हैं हम, सोचने ने ही तो सब कुछ बिगाड़ दिया है। अपने सोचने के तरीके को पॉजिटिव कर ले, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। तो कर्म करने में भी सरलता हो, ये नहीं जल्दीबाजी। जीवन में कर्म भोग आ गए हैं, उसमें भी सरल चित्र हैं, आए हैं सो जाएंगे। आज कोई बीमारी आ गई है, कल जाएगी, ये संकल्प ही ना करो पता नहीं कब जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी। हल्का करो अपने को, भगवान मुझे साथ दे रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस स्मृति से समस्याओं को भी सरलतापूर्वक पार करें, अपनी शक्तियों की स्मृति में रहें, तो जीवन की हर परिस्थिति हल्की लगेगी। हम बहुत बड़े हैं, हम शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिवान से कंबाइंड हैं, समस्याएं हमारे लिए खेल हैं, संकल्प ही ये करने लगे आप। कई लोग सोचते हैं कि ये कहना समस्याएं खेल है, भला इसे क्या होने जा रहा है। आप बिल्कुल गहराई से अंतर मन से संकल्प करें, समस्याएं खेल हैं, परिस्थिति सब जाएंगी, देखो कैसा सुंदर अनुभव होगा। बात ये केवल कहने की नहीं है, इसको अपनी गहरी फीलिंग्स में लाने की जरूरत है। अपने को हल्का कर दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और याद रखें, हम स्वयं हल्के होंगे तो सब कुछ हल्का हो जाएगा। हम हल्के होंगे, बीमारियां भी हल्की हो जाएंगी, समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी, परिस्थितियां भी हल्की हो जाएंगी। यहाँ तक कि बाबा ने तो कहा है, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कर्म और वर्तमान के संस्कार, ये सभी हल्के हो जाएंगे। इसलिए सच्चा योगी सरल चित्त होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने को सरल करें, बहुत सॉफ्ट कर लें। जल्द ही मुड़ जाने वाले, सॉफ्ट माना जो जल्दी ही मुड़ जाए, जो योगी है वो सहज भाव से अपने को आवश्यकता अनुसार मोल्ड कर लेते हैं। वो इच्छाओं के पीछे नहीं भागते, प्राप्तियां उनके पीछे भागती हैं। वो सम्मान के पीछे नहीं भागते, स्वमान में स्थित रहते हैं। वो हार से घबराते नहीं, जीत उनके द्वार पर सदा ही झंडा लिए खड़ी रहती है। हम सब योगी हैं, योगी बन जाएं, अपने को बिल्कुल हल्का करें, बुद्धि की सफाई करते चलें और आगे बढ़ें। हमें संपूर्ण बनना है, अपनी बुद्धि को भी संपूर्ण रूप से दिव्यता से भरना है, सद्विवेक से भरना है। उसमें जो दुर्विवेक आ गया है उसको निकाल देना है। भाई मेरी बुद्धि ये बात नहीं मानती, माना बुद्धि को दिव्य नहीं बनाया है। कहीं कहीं भगवानवाच में भी लोग कहने लगते हैं हमारी बुद्धि इस बात को नहीं समझती, माना अपनी बुद्धि पुरानी बुद्धि अब तक पास रखी हुई है और बुद्धि दाता ने जो बुद्धि दी है वो अभी तक अपने में समाई नहीं है। तो हम अपनी बुद्धि की सफाई करें। जिनको भी इस पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ना है वो चेक करें कि हमने अपनी बुद्धि में क्या क्या धारण कर लिया है। बुद्धि धारणा शक्ति है, कहीं हमने ऐसा तो धारण नहीं कर लिया सभी खराब हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, यहाँ आए थे यहाँ भी वैसा ही मिला, सब बुरे ही बुरे हैं, इसने मेरे से ये किया, ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा करेगा, ये धोखा देगा, इसने धोखा दिया। कहीं हमने अपनी बुद्धि में ये गंदगी तो नहीं रख ली है? ये गंदगी बीमारी पैदा करती है, ये गंदगी अंदर में जर्म्स पैदा करती है, ये गंदगी हमारे मन को विपरीत दिशा में ले जाएगी, ये गंदगी हमें सुखी नहीं रहने देगी, हमें योगी नहीं बनने देगी। इसलिए बुद्धि को साफ करें। अब सब के लिए शुभ भावनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ जाएं, सब बाबा से अपना संपूर्ण वर्षा ले लें, सभी अच्छे हैं। यदि किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया भी है, ये भी तो हमारा कोई हिसाब किताब रहा होगा ना, हमने अवश्य उनसे कुछ बुरा किया होगा पूर्व जन्मों में, जिसका हमें अब आभास नहीं है। रिटर्न हो गया, ऋण चुक्त हो गया, हिसाब किताब पूरे हो गए, हल्के हो जाओ और ऐसी आत्माओं को भी शुभ भावनाओं का दान दो, उन्हें अपना मित्र समझ लो। एक संकल्प कर लें जिन्हें योगी बनना है, इस संसार की सभी आत्माएं हमारे मित्र हैं, जैसे शिव बाबा हमारा मित्र है, खुदा दोस्त है, वैसे इस संसार की सभी आत्माएं भी हमारे मित्र हैं। घर में बैठकर एक बार जरा ऐसा विचार करें तो अपना चित्त भी सुखों से भरपूर होगा, दूसरों को भी हमसे अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। हमें ऐसा सोचना है, ध्यान रखना है कि हम दूसरों को क्या दे रहे हैं। जैसी दृष्टि से हम दूसरों को देखेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस उन्हें जाएंगे। तो हम दूसरों को दुर्भावनाएं दे रहे हैं या अपनी शुभ वृत्तियों से मदद कर रहे हैं, हम दूसरों को शांति दे रहे हैं या अपने निगेटिव संकल्पों से उनके चित्त को भारी कर रहे हैं, हम दूसरों को खुशी प्रदान कर रहे हैं या खुशी छीन रहे हैं, हम दाता हैं, दाता बन जाएं। तो हमें अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्वच्छ करना है, फिर भरपूर करना है। सफाई के बिना वो भरपूर नहीं होती। जैसे घर में आपके दूध देने वाला आ जाए, पहले आप बर्तन साफ करते हैं ना, बर्तन में कुछ और पड़ा हो ये तो नहीं कहेंगे ना, दूध इसमें डाल दो। हमारी बुद्धि भी जब तक स्वच्छ नहीं होगी, इसमें ज्ञान अमृत भरा नहीं जाएगा, इसमें धारणाएं भी ठहरेंगी नहीं, दैवी गुण या शक्तियां इससे स्लिप होकर बाहर निकल जाएंगी। इसलिए बहुत आवश्यक है हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। इसी के साथ हमें अपनी बुद्धि में समाया हुआ अहंकार, इसको भी समाप्त करना है। आध्यात्म के मार्ग पर अभिमान, अहंकार, मैपन, इन सभी को नष्ट करना परम आवश्यक है। यदि कोई ज्ञान योग के मार्ग पर तो चल रहा हो लेकिन उसका अभिमान भी बढ़ता जाता हो तो उसे समझ लेना चाहिए उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं। अभिमान एक जहर की तरह है जिसकी एक बूंद भी काफी है सब कुछ जहरीला करने के लिए। इस पर हम बहुत विस्तार में तो अब नहीं जाएंगे, आप सब जानते हैं। चाहे आपको अपने धन संपत्ति का अभिमान हो गया हो, शारीरिक शक्ति का अभिमान हो गया हो, अपने पद पोजीशन का अभिमान हो गया हो, अपने गुण और रूप का अभिमान हो गया हो, आप घर में बड़े हैं यह आपको अभिमान हो, इन सब को अब हल्का कर दो। हल्का करते करते समाप्त कर दो, मैं तो आत्मा हूं। बस एक ही चीज याद रखें, अपने परम पिता शिव बाबा को देखो जो सर्वशक्तिवान है, सभी खजानों का सागर है, सबसे अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बलवान, सबसे बड़ा पद है उसका परम पद, लेकिन अभिमान का लेस मात्र नहीं है। हमने तो उसे इन आंखों से देखा ना, कितना निराभिमानी है वो, निराकार के साथ संपूर्ण निरहंकारी भी वो है। जब सर्वोच्च सत्ता में कोई अहंकार नहीं तो हमारे पास तो भला है क्या। आज का हमारा रूप कल बिल्कुल बिगड़ सकता है, आज का हमारा धन कल नष्ट हो सकता है, आज की हमारी शक्तियां जल्दी ही छीन हो सकती हैं, आज के हमारे पद पोजीशन कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, इनका अभिमान क्या करना। हमेशा एक लक्ष्य बनाकर चलें कि जो कुछ ये हमें प्राप्त है इससे दूसरों को सुख मिले, पद पोजीशन धन संपत्ति बल, दूसरों को हम कुछ दे पाए। उसी मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से सार्थक है जो दूसरों को कुछ दे सकता हो, जो सदा लेता ही हो, जो छीनने की कोशिश करता हो, जो छीना झपटी करता हो, वो तो मानो मनुष्य भी नहीं है, उसे संपूर्ण बनने के तो स्वप्न भी नहीं देखने चाहिए। हम अपने अंदर छुपे हुए इस मैंपन पर ध्यान दें। बाबा ने कहा, सच्चा योगी वो है जो इस फीलिंग में रहे, मेरा कुछ भी नहीं, न मैं हो न मेरा पन रहे, मैंपन संपूर्ण रूप से विलीन हो जाए, केवल बाबा ही बाबा रह जाए। भक्तों ने, कवियों ने गाया था, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं ना ही। सच्ची बात है, केवल तू ही तू रह जाए, केवल एक की छवि नैनों में समा जाए, एक की छवि दिल पर छाई रहे, एक के ही प्यार में हम मगन रहें, तो मैं की गुंजाइश ही नहीं रहती। और जब तक किसी ने मैं को नहीं छोड़ा, तब तक कोई भी साधक ऐसी योगयुक्त स्थिति को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम चेक कर लें हमारे अंदर मैंपन कहां है। ऐसा तो नहीं हम मैं करते रहते हैं और साथ में ये भी कहते रहते हम तो निमित्त हैं, सब कुछ बाबा ही कर रहा है। बहुतों के साथ ये हो रहा है कि उन्हें अपने सूक्ष्म मैंपन की पहचान नहीं है। वो बाह्य रूप से समझते हैं सब कुछ बाबा कर करा रहा है, हम तो निमित्त हैं, लेकिन टकराव में आ जाते हैं, अभिमान में आ जाते हैं, फीलिंग में आ जाते हैं, जल्दी ही डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उमंग उत्साह को खो देते हैं, सेवा के फील्ड पे टेंशन में रहते हैं। ये सब मैंपन ही तो है। तो जिसको संपूर्ण बनना है उसे इस मैंपन को पूरी तरह से तिलांजलि देनी होगी, मैं की कोई जगह नहीं, बस तू ही तू। साथ में थोड़ी सी दृष्टि डालें, हम जब इस ईश्वरीय पथ पर चल रहे हैं तो हमें अपने चित्त को वैराग्य से अवश्य भरना चाहिए। वैराग पर आपने बहुत कुछ सुना होगा। वैराग के बिना न तो त्याग होता, न एकाग्रता होती, न दूसरों को सकास दी जा सकती। वैराग ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम अनेक मनोविकारों को, अनेक व्यक्त के संकल्पों को, अनेक बंधनों को काट सकते हैं। वैसे लगता है बहुत लंबी चौड़ी बात है, पर वैराग आते ही ये सब स्वतः ही धराशाही हो जाता है। और वैराग का सबसे सुंदर और सरल सा संकल्प है, अब ये विश्व का नाटक पूरा हुआ, 5000 साल का ये खेल पूरा हो रहा है, सब कुछ छोड़कर अब वापस घर जाना है। जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो सब कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सत्ययुग में इस सब की आवश्यकता और महत्ता नहीं होगी। इस फीलिंग को अपने अंदर बढ़ाएं, दूसरी फीलिंग बढ़ाएं, जिसको पाने के लिए हम वैराग धारण करते थे, अब वो आया है। तो ऐसा ना हो हमारा वैराग समाप्त हो जाए। अब हम संकल्प करें, उससे हमें सब कुछ प्राप्त कर लेना है। बाबा को खाली करके भेजना है परमधाम। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर अपने धाम लौट जाऊंगा। हमें उससे सब कुछ ले लेना है, इसलिए संसार में उलझना नहीं है। ज्ञान युक्त होकर हम अपने अंदर वैराग धारण करें। लेकिन वैराग का अर्थ ये कदापि नहीं हम कर्म छोड़ दें, या अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, या माताएं अपने बच्चों को प्यार न दें, उनकी पालना न करें। कर्म करते हुए इस फीलिंग में रहना कि सब आत्माएं हैं, हम केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं और अब हमें घर वापिस जाना है। इस संसार की इच्छाओं के प्रति, साधनों के प्रति, विषय भोगों के प्रति आसक्त न हो। बस इतनी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जीवन सहज ही योगयुक्त हो जाएगा। हमें याद रहे, हमें योगयुक्त होकर कुछ समय इस धरा पर रहना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम संपूर्ण बनते ही शरीर छोड़ देंगे। संपूर्ण बनकर भी हमें कुछ समय यहीं गुजारना है, ताकि हमारी संपूर्णता का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर करे। हमारी संपूर्णता के पवित्र वाइब्रेशंस इस संसार के विनाश में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। संसार के विनाश की जब हम बात करते हैं तो डरने की बात नहीं, बल्कि बुराइयों का विनाश, पाप कर्मों का विनाश, पापियों का विनाश, जिसको हम चाहते हैं, प्रकृति का शुद्धिकरण, ये सब हमारी पवित्रता और संपूर्णता की स्थिति में होगा। क्योंकि ऐसी संपूर्णता की स्थिति में ही हमारा योग, उससे प्रकट हुई योग ज्वाला, योग अग्नि संसार के विनाश का मुख्य कारण बनेगी। आओ हम सभी संपूर्णता का सुख प्राप्त करें। बड़ा भारी अतिंद्रिय सुख है इस यात्रा पर चलने में। संसार के सुख, विषय भोगों के सुख तो सभी ने देख लिए, अब ईश्वरीय सुखों में मगन हो जाएं। इस सुख से स्वयं को यदि हम भरपूर करेंगे तो 84 जन्म सदा सदा सुख को प्राप्त करेंगे। दुख हमारे द्वार पर हमारे कदमों को छू भी नहीं पाएगा। तो चलें लगन से संपूर्णता की ओर। ओम शांति।